नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी आशियाना हाउसिंग पुणे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय परियोजना के विकास के लिए 275 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि उसने पुणे के तलेगांव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संयुक्त उद्यम परियोजना आशियाना अमोध पेश की है। ये कंपनी इस तरह की सातवीं परियोजना है। बयान के अनुसार 11.93 एकड़ में फैली ये परियोजना चार चरणों में पूरी की जाएगी और इसमें 275 करोड़ रुपए का निवेश होगा। परियोजना का वित्त पोषण आंतरिक संसाधनों और निर्माण से जुड़े वित्त के जरिए किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण के तहत मकानों की डिलीवरी अक्टूबर 2026 में की जाएगी। कंपनी ये परियोजना 55 और उससे अधिक उम्र के लोगों को ध्यान में रखकर बना रही है। ब्रिटेन के शुल्क लाभ योजना जीएसपी को वापस लेने के फैसले से चमड़ा और कपड़ा जैसे कुछ श्रम आधारित क्षेत्रों के भारतीय निर्यातक प्रभावित हो सकते हैं। विशेषज्ञों और व्यापारियों ने ये बात कही है। ब्रिटेन 19 जून से जीएसपी की जगह एक नई व्यवस्था विकासशील देश के लिए व्यापार योजना को लागू कर रहा है। इस कारण कपड़ा, चमड़े के सामान, कालीन, लोहा और इस्पात के सामान तथा रसायनों सहित कुछ श्रम आधारित क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य विकसित देश अपने जीएसपी योजनाओं के तहत विकासशील देश को आयात शुल्क रियायत देते हैं। जीटीआरआई के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, चूंकि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर आ गया है, इसलिए उसने अपनी जीएसपी योजना तैयार की। प्रत्येक देश उत्पादों के आधार पर एक सीमा निर्धारित करता है और यदि किसी देश का निर्यात उस सीमा से अधिक होता है तो जीएसपी रियायतें बंद हो जाती हैं। ब्रिटेन श्रम आधारित क्षेत्रों को दी जाने वाली जीएसपी रियायतें वापस ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह अनुमान पहले से था कि ब्रिटेन इन रियायतों को वापस लेगा, क्योंकि दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंडियों में किसानों की सुविधा और फसलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालयों में जांच प्रयोगशालाएं बनाने पर जोर देते हुए कहा कि इनमें जैविक प्राकृतिक उत्पादों का सत्यापन किया जाएगा। सोमवार को जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 168वीं बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे किसानों के जैविक प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन ब्रांडिंग के लिए लैब टेस्टिंग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यद्यपि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा लखनऊ, मेरठ, बनारस एवं झांसी में प्रयोगशालाएं संचालित हैं, लेकिन प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में ऐसी सुविधा नहीं है। कामधेनु पेंट्स अगले 3 वर्षों में अपने राजस्व को 4 गुना बढ़ाकर इसे 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य बना रही है। कंपनी के सीएमडी सतीश कुमार अग्रवाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया कि 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष में कंपनी ने करीब 251 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। कामधेनु समूह ने हाल ही में भारत में 2 खंडों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अपने पेंट और इस्पात कारोबार को अलग किया था। उन्होंने कहा, हमें वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक राजस्व में 4 गुना वृद्धि के साथ इसके 1000 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 251 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया था। अग्रवाल ने आगे कहा कि कंपनी के उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ कामधेनु पेंट्स नए उत्पादों की पेशकश कर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करेगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को अपने आगामी प्रीमियम यूटिलिटी वाहन इनविक्टो की बुकिंग शुरू कर दी। मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि 5 जुलाई को पेश होने वाले इस वाहन की बुकिंग 25,000 रुपए के भुगतान के साथ कराई जा सकती है। ये बुकिंग कंपनी के प्रीमियम रिटेल आउटलेट नेक्सा शोरूम से या ऑनलाइन कराई जा सकती है। इनविक्टो के साथ कंपनी प्रीमियम 3 रो खंड में प्रवेश करेगी। MSI 20 लाख से महंगे वाहनों की श्रेणी में पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि 20 लाख तक की श्रेणी में उसका वर्चस्व है। MSI के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि 3 रो SUV MPV खंड का बाजार पिछले वित्त वर्ष में 2.58 लाख इकाइयों में था। इसमें 20 लाख से महंगी गाड़ियों की बिक्री 1.2 से 1.25 लाख इकाई रही थी। भारत सरकार ने 2025-26 तक प्रौद्योगिकी को देश के GDP का 20-25% करने का लक्ष्य रखा है। भारत के IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय अमेरिकी उद्यमियों से ये बात कही और उन्हें भारत में निवेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, विविधता आई है और इस समय तकनीकी क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं जहां भारतीय उद्यमी, भारतीय स्टार्टअप मौजूद नहीं। चंद्रशेखर ने वैश्विक भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवर संघ के वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा, सेमीकंडक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, ब्लॉकचेन और कंप्यूटिंग लैंग्वेज से लेकर उपभोक्ता इंटरनेट तक हर जगह भारतीय उद्यमी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी का कोई भी क्षेत्र जिसे आप आज देखते हैं, वहां भारतीय स्टार्टअप, भारतीय उद्यमों और भारतीय नव प्रवर्तकों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। भारतीय नवाचार अर्थव्यवस्था 2014 में 4-5% से बढ़कर आज 10% हो गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।